ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम अज्ञान तिमिरांध ज्ञानांजन शलाका चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे
हरे राम।
तो कल हमने सुना था कि किस तरह से हनुमान जी लंका पहुंचे थे, और उससे पहले हमने सुना था कि किस तरह के अलग अलग गुण रावण में है। रावण और कुंभकर्ण ये दोनों ही बड़े बलशाली थे कि देवताओं तक का उनका कोई सामना नहीं कर सकता था, बहुत बलशाली थे। कहा जाता है कि रावण के भय से सारे नक्षत्र, सारे अप्सराएं, सारे गंधर्व, सारे देवता ये सब इतने भयभीत थे क्योंकि उसके पास अमरत्व जैसा वरदान था, क्योंकि उसको कोई मार नहीं सकता था। जैसे वो हमने बताया था कल कि वो अपने प्राण को छुपा के रखता था, किसी को पता नहीं होता था कि वो कहाँ पर कैसे मरता था, नाभि में रखा था उसने अपना प्राण। तो इस तरह से सीता का हरण होने के बाद उसने अपना विनाश निश्चित कर लिया था। तो कल हमने सुना था कि हनुमान जी ऐसा चाहते थे कि वो रावण को जाके कुछ एडवाइस करें, रावण को कुछ समझाए, तो हो सकता है कि वो बच जाए। लेकिन भगवान का ये पूरा जो लीला है उसमें रावण का जो वध है वो सबसे बड़ा हिस्सा था। कहा जाता है कि माता कैकेयी जो है उनको राम के प्रति बहुत स्नेह था, इसलिए एक ऐसी सेवा करना चाहते थे भगवान राम कि जो जो सबसे प्रिय भक्त होते हैं उसको ही किया जाता है वो कार्य। तो कहके रामचंद्र को बहुत प्रिय थे माता के रूप में, तो वनवास का जो नाटक करना पड़ा वो कहके के द्वारा करवाया गया। हालांकि उसके कारण कहके को बहुत निंदा सुनना पड़ा, बहुत लोगों का तिरस्कार मिला। यहाँ तक कि आज भी कई लोग कैकेयी को ठीक से नहीं समझते और कैकेयी को दुष्टा गिनते हैं, अभी भी कई लोग। लेकिन ऐसा माना जाता है कि कैकेयी इतनी भगवान की प्रिय थी माता के रूप में कि भगवान ये महान कार्य उनके द्वारा करवाना चाहते थे। कौन सा महान कार्य? भगवान केवल राजा बनने के लिए नहीं आए थे इस पृथ्वी पर, भगवान का सबसे बड़ा काम था भूभार हरण। राक्षस जाति इतनी फैल गई थी, इतनी बलवान हो गई थी कि उन सबका नाश करना निश्चित था। ये जो राक्षस जिनकी हम बात करते हैं ये राक्षस मानव भक्षी राक्षस हुआ करते थे। मानव भक्षी राक्षस का अर्थ होता है कि उनके लिए किसी मनुष्य को खाना आम बात है। पशु को तो बात, पशु का तो बात छोड़ो, मनुष्य तक को भी खा सकते थे। और आज इस प्रकार की राक्षस जाति इस संसार में भी दिख रही है, अभी भी राक्षस जाति अभी भी है कहीं कहीं जगह। जैसे चाइना में आज भी लोग मनुष्य को खाते हैं, चाइना में छोटे छोटे बच्चे को खा जाते लोग। So China, Thailand, Japan, Korea, ये उस प्रकार की जगह है जहाँ पर राक्षस जाति अभी भी दृश्यमान होती है। अभी भी आज वहाँ पर एक भक्त हमारे गए थे चाइना में, हमेशा ही उदाहरण देता हूँ, वो चाइना में गए थे बिजनेस मीटिंग के कारण, और वहाँ पर उनकी एक कॉन्फ्रेंस थी उनके कुछ लोगों के साथ, तो उन्होंने कुछ रेस्टोरेंट में रखा था ये कॉन्फ्रेंस, तो रेस्टोरेंट में ओपन रेस्टोरेंट था, बड़ा महंगा था, तो वहाँ सब डाइनिंग वगैरह व्यवस्था थी, बाजू में एक छोटा सा पूल था पानी, तो इनको लगा कि ये कितना अच्छा है, देखो सुंदर जगह है, पूल के तट पूल है, पानी है सरोवर जैसा, छोटा सा तालाब, उसके बाजू में बैठो और वहाँ पर बैठ के खाओ। लेकिन बाद में उन्होंने देखा कि उनके जो रेस्टोरेंट के किसी स्टाफ ने उनके सामने ही वो पानी में से किसी को पकड़ा, कोई प्राणी को, और जैसे ही प्राणी को पकड़ करके उसको जिंदा ही दे दिया सामने दूसरे टेबल पर खाने के लिए। तो उनको अंदाजा भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है, वो देखते रह गए, उनके सामने दिया, उसकी प्लेट में रख दिया खाने के लिए। तो ये है चाइना, ये राक्षस जाति के लोग, तो ये राक्षस जाति बहुत फैली हुई थी उस समय, और वरदान भी तो था कि रावण और कुंभकर्ण का वध होना चाहिए। रावण का वध शिवजी के द्वारा नहीं हो सकता था, ब्रह्मा जी उसको नहीं मार सकते थे, केवल विष्णु के हाथ में उसका मृत्यु लिखा था, तो इसलिए भगवान का वहाँ पर ये वनवास जाना बहुत ही आवश्यक था। अगर वो वनवास नहीं जाते तो रावण का वध करना बहुत मुश्किल हो जाता, क्योंकि रावण को किसी दोष, कौन से दोष पर उसको मारे, रावण ने अपना त्रास फैलाया था और सारे ऋषि मुनियों को मारना शुरू कर दिया था उसने, बहुत ऋषियों का वध, ऋषियों को मारता था, वध करता था। एक बार सीताराम और लक्ष्मण ये लोग वनवास में गुजर रहे थे, तो उन्होंने एक हड्डियों का ढेर देखा, बहुत सारी हड्डियां थी उधर, तो उन्होंने किसी को पूछा कि इतनी सारी हड्डियां किसकी है, बहुत पूरा जैसे समझ लो कि पूरा कचरे का ढेर होता है, ऐसे हड्डियों का ढेर था। तो किसी ने वहां पर बताया कि ये सारी हड्डियां ऋषियों की है, इतने सारे ऋषियों का संहार करते हैं राक्षस लोग। तो रामचंद्र बहुत क्रोध में आ गए, बड़े गुस्से हो गए, और घोषणा कर दी कि मैं सारे राक्षस जाति का विनाश कर दूंगा, ऋषि को इतना त्रास किया। तो ऐसे कुछ आचार्य कहते हैं कि जब सीता देवी ने ये सुना कि राम सारी ये राक्षस जाति का विनाश कर देंगे, तो उनके हृदय में वो माता की करुणा उनके हृदय में आई, और उन्होंने रामचंद्र को कहा कि इस तरह से तुम मेरे साथ हो तो तुम इन सबका वध मत करो, हत्या मत करो इन सबकी। रामचंद्र ने कहा कि इन सबका वध करना आवश्यक है, इसी के लिए तो मैंने जन्म लिया है। तो सीता ने कहा कि नहीं, तुम्हें मुझे सहायता, तुम्हें या तो फिर कुछ वचन दो। तो रामचंद्र ने कहा बताओ क्या क्या वरदान चाहिए, कुछ वचन चाहिए। तो कहा कि अगली बार जब तुम प्रकट हो कृष्णा के रूप में, तो उस समय तुम किसी असुर का वध नहीं करोगे। तो भगवान ने कहा कि किसी को धनुष बाण से नहीं मारोगे, कि तुम ये धनुष बाण का उपयोग नहीं करोगे, ऐसा वचन। तो भगवान ने कहा कि हाँ, अगली बार जब मैं प्रकट होऊंगा, जब मैं तुम्हारे साथ आऊँगा, तब तक मैं किसी को धनुष बाण से नहीं मारूंगा। तो कृष्ण रामचंद्र कृष्ण के रूप में प्रकट हुए और कृष्ण ने वृंदावन में बहुत सारे असुरों को मारा, पूतना अतना और बकासुर अघासुर सबको मारा। तो हनुमान राधा रानी के रूप में से सीता देवी राधा रानी के रूप में, राधा ने कहा कि मैं तो मना किया था, तो मैं मारने का, बोले मैंने कहा धनुष बाण यूज़ किया है। एक भी वृंदावन का एक भी असुर नहीं जिसको भगवान ने धनुष बाण से मारा हो, एक भी असुर नहीं, और मैंने कहा मारा है। जैसे मथुरा गए फिर मारा धनुष बाण से, लेकिन जब राधा रानी साथ में नहीं थे तो राधा रानी ने फिर कृष्ण लीला में ये संकल्प किया कि अभी तुम नेक्स्ट टाइम जब प्रकट होंगे ना, तो मैं तुम्हारे शरीर के भीतर ही छिप जाऊंगी, तो तुम किसी का वध ही नहीं कर सकते। तो चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए और राधा रानी चैतन्य महाप्रभु के हृदय में प्रवेश किए कृष्ण के रूप, तो ये दोनों का युगल स्वरूप हुआ। तो इसके कारण राधा रानी के हृदय में बहुत करुणा है भक्तों के प्रति, जैसे माता के हृदय में बच्चा कैसा भी हो, आपको पता होगा वो, तो कि बच्चा दुष्ट से दुष्ट होगा लेकिन माँ के लिए वो उसका सबसे अच्छा बेटा है, राजा है उसका, ऐसा माना है। कितना भी वो सुंदर ना हो, कैसा भी हो, लेकिन माँ को उसका बेटा ही सबसे ज़्यादा सुंदर लगता है। तो राधा रानी का वात्सल्य भाव सभी सारे भक्तों पर होता है, तो इसलिए राधा रानी के रूप में चैतन्य महाप्रभु के साथ प्रकट हुए और सब पर करुणा बांटी उन्होंने। तो रामचंद्र ने सारी राक्षस जाति का वध करने का निश्चय किया था उन्होंने, इसलिए ये लीला आवश्यक था। इसलिए हनुमान वहाँ पर गए। दूसरी बात ये भी थी कि वानर एक राक्षस जाति का बढ़ावा हुआ था और एक वानर का बढ़ा हुआ था, वानर बहुत बढ़ गए थे पृथ्वी पे, बहुत सारे वानर हुए, तो इन सब का भी वध करना आवश्यक था। इसलिए भगवान ने उनको भी अपने साथ ले लिया युद्ध में, इन दोनों को आपस में लड़वा दिया, दोनों ही मर जाएंगे आपस में लड़ लड़ के, लेकिन भगवान का अपना काम हो जाएगा। वानर शब्द का अर्थ होता है नर, वानर, वानर शब्द का अर्थ होता है कि वो किम पुरुष जैसा शब्द है। ये किम पुरुष उसको बोलते हैं कि उसको देखकर आप बता नहीं सकते कि ये पुरुष है या वानर है, उस प्रकार की जाति के लोग किम पुरुष। तो ये वानर जो यहाँ पर वर्णन है उसमें ज़्यादातर तो बंदर, लेकिन ये जो सुग्रीव हनुमान इत्यादि जो है वो लोग उनके शरीर जो थे वो पुरुषों जैसे होते थे, लेकिन वानर जाति के थे, एक ऐसी जाति है उनकी। तो ऐसे है आज भी कुछ जगह पर ऐसे लोग हैं, यहाँ तक कि ऐसा भी कहा जाता है कि हनुमान भी जीवित है अभी भी, और हनुमान हिमालय में कहीं पर अभी भी ध्यान कर रहे हैं भगवान का, राम का, वो तो अमर है ना, उनका मृत्यु नहीं होता। तो ऐसे, और उनको बहुत सारे वरदान मिले जब उन्होंने वो वायुदेव को अपने मुंह में रख दिया था ना, पूरा वायु बंद कर दिया था, उनका हनु टूट गया था हनुमान जी का, तो उस समय उनको प्रसन्न करने के लिए बहुत सारे वरदान उनको प्राप्त हुए। तो ये शक्तिशाली हनुमान, कल हमने चर्चा किया था कि उनका सामना हुआ था जाम्बू माली से, तो जाम्बू माली वो शराब के स्विमिंग पूल में से बाहर आया था और रावण ने उसको भेजा था किसी बंदर को मारने के लिए, या हनुमान को मारने के लिए। तो रावण ने कितनी सेना भेजी थी उसके साथ, हाँ रावण ने जो जाम्बू माली के साथ जो भेजा था वो कितना था, वो तो खर दूषण के साथ था, इसलिए 80,000 सैनिकों के साथ जांबूमाली को भेजा। जांबूमाली जैसे वहाँ पर गए और कहा गए मरकट सब बहुत विध्वंस किया तूने, तो जानता नहीं, जोर जोर से चिल्ला रहा है कि मैं राम का सेवक हूँ, मैं राम का सेवक हूँ, रावण को मार दूंगा। तो रावण की तो बच्चों का खेल है रावण को मारना, जानता है रावण कौन है? तो हनुमान का अच्छा कौन है रावण कौन है? तो उन्होंने कहा कि ये जो नक्षत्र है ना, ये सारे उनके उनके रसोई घर में सब्जी काटते हैं, और ये देवता लोग जो है दिक्पाल है लोकपाल है ये सारे उसके बंदी गृह में है। देवता लोग उसकी उसके भय से कांपते हैं, और तू कहता है कि तू रावण का वध करेगा, शक्ल देखिए कभी आईने में। हनुमान को सब बता रहा था वो जांबूमाली। फिर बोलने लगा कि उन्होंने कैलाश को उठा लिया था, उन्होंने इसका वध किया था उसका वध किया था, ऐसा सब बताना शुरू किया उसने। फिर कहा कि ये प्रहस्त, मैं रावण का बेटा था प्रहस्त, और मैं प्रहस्त का बेटा हूँ। जांबूमाली है वो प्रहस्त का बेटा है। तो बोले मैं प्रहस्त का बेटा हूँ, मेरा बाप प्रहस्त वो खेल खेल में बड़े बड़े पर्वतों को खा जाता है, बड़े बड़े पर्वतों को मुँह में डाल देता है, खा के चबा देता है। तो क्या समझ? तो रावण हनुमान ने कहा भूतकाल की बात मत कर, अभी का बात कर। अभी क्या, वो तो सब पहले के बीत चुकी वो सब बात है, अभी का बात करो। अभी का आज का दिन का सत्य यह है कि मैं तेरी अच्छा कुआरी का उजाड़ दिए। जांबूमाली बहुत परेशान हो गया, बहुत क्रुद्ध हो गया, तो उसने वो तीर छोड़ना चाहा हनुमान के ऊपर। तो हनुमान ने क्या किया कि अशोक बड़े बड़े अशोक वृक्ष उसके ऊपर फेंके। तो जांबूमाली ने इससे देखा कि इसको कुछ मैजिक कुछ जादू करना पड़ेगा, और माया हुई थी ना सब। तो रथ मंगवाया, जांबूमाली का रथ घोड़े पे नहीं चलता था, गधे से चलता था। तो गधे वाला रथ था उसका, जांबूमाली का। तो रथ लेके आए, हनुमान उसको देख के पहले तो हंसने लगे, गधे पे आया तो वो रथ को लेके। और फिर उन्होंने हनुमान ने कटाक्ष किया उसको लेकर, वे आजकल तो ये राक्षस लोग भी इसे सोफिस्टिकेटेड रथ लेके आ जाते हैं। तो फिर हनुमान ने कहा कि उन सब पत्थर फेंके एक दूसरे के ऊपर। तो बाद में उसने जांबूमाली ने सोचा कि इसको और मजा चखाना पड़ेगा। वो उसका बाण काम नहीं कर रहे थे, और जो भी बाण मारता था हनुमान को कुछ नहीं होता था, हनुमान तोड़ देता था बाण जो भी डालता था उसको। तो क्या किया उसने, अपना शरीर का विस्तार किया, बड़ा हो गया एकदम। तो उसने जैसे बड़ा हुआ तो देखा नीचे कि हनुमान छोटे से इतने से 2 इंच के दिख रहे थे उसके पाँव के पास। तो उसका ऐसा इच्छा हुआ कि 2 इंच के भी क्यों, 1 इंच का क्यों नहीं, और भी छोटा हो जाना चाहिए। तो और विशाल किया अपना शरीर, इतना आकाश में विशाल किया अपना शरीर को। इसके बाद फिर उसने अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखों के सामने एक बड़ा सा गोल दिखाई दिया। तो ये क्या है? फिर बाजू में देखा तो दूसरा एक गोल था बड़ा सा। तो सोचने लगा ये क्या है। तो फिर वो ढूंढने ऐसे ऐसे उधर देखने गया, हनुमान कहाँ गया? हनुमान ने कहा ऊपर देख। तो उसने ऊपर देखा, बोले तू जो देख रहा है ना वो मेरे घुटने है, तू मेरे घुटने तक आ रहा है हनुमान जी। तो बोले कि ये कैसे संभव है, और मैंने मेरी सारी शक्ति लगा दी, मैं इतना ऊपर, इससे ज्यादा ऊपर नहीं हो सकता मैं। हनुमान ने कहा कि देख। तो उसने देखा कि अभी तो वो 80,000 सैनिक देखेंगे तो क्या कहेंगे कि हनुमान इतना बड़ा हो गया जांबूमाली। तो पीछे मुड़ के देखा सब मरे पड़े थे। हनुमान जी ने कहा किसको देख रहा है? बोले तू जब बड़ा हो रहा था तभी मैंने एक ही मिनट में 80,000 सैनिक मार दिए तेरे। कैसे मारे? वहाँ पर एक चैत्य नाम का एक असेंबली हॉल था रावण का, तो असेंबली हॉल में से उसके जो पिलर थे वो पूरा मार्बल का बना हुआ था। असेंबली हॉल वो सभाखंड पूरा मार्बल का था, उसके बड़े बड़े पिलर्स थे। तो हनुमान ने उस सारे पिलर एक एक करके निकाल करके सैनिकों के ऊपर डाल दिए और असेंबली हॉल भी तोड़ दिया, तो सारे सैनिक मर गए। लेकिन जाम्बू माली ऐसे देखा, फिर जाम्बू वो बोले अब क्या करूँ भगवान। हनुमान ने कहा बहुत सिंपल है, अब तेरे लिए एक ही चीज़ बची है, मेरे चरण पकड़ सकता है तू। तो वो क्रुद्ध हो गया, गुस्से में आ गया, बोले ये सारी माया है, असली स्वरूप में आओ, ये तुम भी अपना मूल रूप में आओ, मैं भी अपने मूल रूप में आऊँगा। हनुमान ने कहा ठीक है जैसी तुम्हारी इच्छा। दोनों छोटे हो गए, वापिस वही स्वरूप ले लिए दोनों छोटे। फिर हनुमान ने कहा कि देखो जामा माली, मैं तुम्हें 3 मिनट का अवसर देता हूँ, 3 मिनट में देता हूँ। हनुमान ने कहा देखो उधर आसन है उधर बैठ जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ बैठता हूँ और मैं तुम्हें एक मंत्र सिखाता हूँ, बोलो राम राम उच्चारण करो। बोले मैं तुम्हारे साथ मंत्र सीखने आया हूँ, मैं तो युद्ध करने आया हूँ तुम्हारे साथ। हनुमान ने कहा देखो युद्ध तुमसे हो नहीं सकता, तुम्हारे कोई बाण मुझ पर काम नहीं कर रहे, तो जो हो सकता है वो करो ना, जो नहीं हो सकता इसको क्यों करना है। तो जो हो सकता है वही मैं बता रहा हूँ कि तुम ये राम का नाम लो, मैं 3 मिनट के बाद तुम्हारा वध कर दूंगा, तुम भगवत धाम चले जाओगे। तो क्रुद्ध हो गया, फिर से टूट पड़ा हनुमान के ऊपर। तो इस बार हनुमान ने क्या किया, उसकी नाभि पर हनुमान ने उंगली लगाई और उसको उठा लिया आकाश में, और उसको ऐसे चक्कर लगाया कि जैसे कोई चक्कर पंखा चल रहा हो, इतना जोर से घुमाया उसको, ऐसा जोर से घुमाया तभी उसके प्राण चलेगा, और फिर उसको फेंक दिया उठाकर। तो ऐसे जामू मालिक का वध हुआ तो रावण परेशान हो गए। ऐसे कई अलग अलग लोगों को भेजा उन्होंने, बाद में सबसे बड़ा उनका जो हथियार था वो कौन था, इंद्रजीत को भेजा रावण ने, है ना। इंद्रजीत बहुत शूरवीर है। इंद्रजीत ने देखा कि हनुमान इतने सारे लोग का वध कर चुका है, तो उसने अपने सबसे उत्तम कोटि के बाण उस पर डाले। लेकिन हनुमान ने क्या किया कि अपना स्वरूप पहले से ही बड़ा कर दिया था, बहुत बड़ा। तो कई देर तक युद्ध चला, ना हनुमान को नुकसान हुआ ना इंद्रजीत को नुकसान हुआ, क्योंकि हनुमान भी कुछ कम नहीं थे और इंद्रजीत भी कुछ कम नहीं था। लेकिन बाद में इंद्रजीत ने सोचा कि इसके ऊपर ब्रह्मास्त्र के अलावा और कोई उपाय नहीं है, इसको ब्रह्मास्त्र छोड़ना पड़ेगा। तो ब्रह्मास्त्र उस पर फेंका, तो हनुमान ने सोचा कि इसने मुझ पर ब्रह्मास्त्र फेंका है, ब्रह्मा जी का वरदान है कि जो भी ब्रह्मास्त्र जब भी मेरे पास आएगा तो मैं केवल 1 मिनट के लिए बंद जाऊंगा, 1 मिनट के बाद उस ब्रह्मास्त्र की सारी जो असर है वो चली जाएगी, तुरंत नष्ट हो जाएगी ऐसे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन बाद में सोचा कि ये अच्छा आइडिया है, ऐसे तो मैं रावण के पास जा नहीं सकता, बहुत सारे मंत्रियों के पास जाना पड़ेगा तब जाके रावण के पास जाऊँ, और ये लोग मुझे ऐसे ही बिना कोई कारण से ले जाएंगे रावण के पास। तो एकदम इंटेलिजेंट विचार है, तो कि रावण के पास जाना है तो उनको ही सेवा करने दो, वही ले जाएंगे हमें रावण के पास। तो उन्होंने बंद जाना स्वीकार किया, और ये जैसे बंद जाना स्वीकार किया तो सब उसको गाली देना लगे और हंसने लगे, मजाक उड़ाने लगे, बड़े को बंदर आया ऐसा करके पकड़ लिया, बंदर को पकड़ लिया, बंद गए हनुमान, रावण के पास ले गए। रावण के पास ले गए तो रावण ने कहा कि क्यों ये क्या तमाशा चल रहा है, ये क्यों ये कर रहा है तू। तो हनुमान ने कहा कि देखो मैं तो पहले नाटक कर रहे थे, पहले कहा कि मैं तो एक छोड़ रहा एक बंदर हूँ, जिज्ञासावश आया था, सुना है रावण बहुत बड़ा राजा है तो मैं तुम्हारे दर्शन करने आया, अभी तुम्हारे दर्शन करना एक बंदर को कौन अलाउ करेगा, तो मैं सोचा कि कुछ तोड़ फोड़ करूँगा तो सैनिक आएंगे उठा के ले जाएंगे, तो इसलिए ये सब नाटक किया मैंने। फिर कहा कि देखो मेरा कोई मारने का इरादा नहीं था किसी को, और ये लोग मुझ पर आघात कर रहे थे तो उन सबको अपनी रक्षा करने के लिए मैंने उसको मार दिया, मैं क्या करूँ उसमें, ऐसा सब नाटक किया। रावण बोले क्या बकवास कर रहे हैं। फिर कहा बाद में कहे वास्तविकता तो ये है कि मैं महाराज सुग्रीव का सेवक हूँ, मैं महाराज सुग्रीव के पास से आया हूँ, सुग्रीव ने तुम्हारे लिए शुभेच्छा भेजा है, ये सब बताया तो तभी भी रावण को संतुष्ट नहीं हो। रावण ने कहा तुम बताओ सच में कौन हो। प्रहस्त ने कहा कि अगर तुम बताओगे सच में कौन हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ऐसा तो हनुमान ने कहा सच तो है ये है कि मैं रघुनंदन रघुवीर श्री राम दशरथ पुत्र राम का दूत हूँ और मैं तुम्हारे लिए संदेशा लेके आया हूँ। हे रावण तुम बुद्धिशाली हो, तुम पराक्रमी हो, तुम्हें ज्ञान है, तो तुम्हारा यश फैला हुआ है, तुम्हें शौर्य है, सब कुछ है, लेकिन क्यों फिर इस प्रकार की घिनौनी हरकत करते हो? क्या एक स्त्री के कारण राक्षस जाति का विनाश तुम्हें शोभा देता है? क्या तुम्हारे पास स्त्रियों की कमी है? ऑलरेडी तुम्हारे पास 12,000 रानियां हैं और लंका की जितनी भी सुंदर स्त्री हो सो तुम्हारी जो दासी बनी हुई है सब, तुम जैसे कहोगे वैसे करेंगे हो तो, और यहाँ तक भी संतुष्ट नहीं हो तुम। ये लोभ ऐसी वस्तु है ना कि लोभ, अभी 12,000 रानी है फिर भी उसका मन धराता, आप सोचिए उसका संतुष्ट नहीं हुआ हो, ये भौतिक इच्छाओं का ये परिणाम होता है। कितना मूर्खता है सोचो, कितनी मूर्खता है कि ये संग्रह वृत्ति, ये आसुरिक भावना है, कैसी मूर्खता है। अब सोचो कि आप एक बार में एक ही रोटी खा सकते हैं तो 1,000 रोटी इकट्ठा करने का क्या फायदा, इससे क्या होगा? रावण को ऐसा तो कोई बड़ा चमत्कारी था नहीं कि 12,000 रानियों के साथ 12,000 अलग अलग रूप लेकर भगवान की तरफ 16,108 महल में रहा था, ऐसा तो कुछ था नहीं, ऐसा कोई पराक्रम नहीं था उसका, लेकिन लोभ था उसका। लोभ किसका लोभ था? काम का लोभ था, वो भोग करना चाहता था। 12,000 रानियां थी फिर भी उसका मन संतुष्ट नहीं था। इसका अर्थ होता है कि काम एक ऐसा है, भगवान कहते हैं ना दुष्पूरेणा नले न च, भगवद गीता में बताया गया है भगवान ने दुष्पूरेणा नले न च। दुष्पूरेणा का अर्थ होता है कि वो कभी भी संतुष्ट नहीं होता, कभी भी संतुष्ट नहीं होता, अग्नि की तरह जलता रहता है। तो इसलिए उस किसी भी प्रकार की भौतिक कामनाएं है समझ लो हमारे हृदय में, कि ये काम का सबसे जो कॉन्सेंट्रेटेड रूप है वो है लस्ट, काम, ये पुरुष और स्त्री का आकर्षण। लेकिन काम किसी काम का दूसरा एक अर्थ होता है इच्छा, भौतिक इच्छा। अगर समझ लो कि हमारे हृदय में कहीं पर भौतिक इच्छा है कि हम कुछ भौतिक लाभ चाहते हैं, तो वो लाभ आपको लोभी बना सकता है, वो इच्छा आप ज़्यादा चाहते हो। और फिर संग्रह वृत्ति, आप देखो ये बड़े बड़े घोटाले होते हैं, यू नो अब तो उनके पास लिस्ट है बड़ा, इसका डबल ये, उसका डबल ये, एक घोटाले का डबल घोटाला, ये डबल अभी कौन सा कोयले का घोटाला, वो तो कितना बड़ा है। फिर वो 2G कांड 4G कांड क्या क्या है वो सब, लोग कितना अब ये सबको धूल चटा के निकल गया लंदन, यू नो कौन नाम उसका मालिया निकल गया, कितना करोड़ों रुपए उठा करके भाग गया, कुछ नहीं कर पाया, क्या कर पाया। तो ये संग्रह वृत्ति लोभ वृत्ति है, क्या करेगा वो, कुछ नहीं करने वाला, मर जाएगा, ऐसे पैसा ऐसे ही रहेगा। हजारों हजारों लाखों लोगों के स्विस बैंक में अकाउंट है, और ज़्यादातर किसी केसेस में ऐसा होता है, देखो कितनी होशियार है स्विस बैंक ना, कि ज़्यादातर केसेस ऐसे होते हैं, सर्वे भी था कुछ कि उसके जो डिपॉजिट करने वाले लोग हैं ना, पैसा डालते हैं बैंक में, करोड़ों रुपए डालते हैं बैंक में, और वो बैंक के जो रुपए होते हैं करोड़ों रुपए, वो इतने समय तक पड़े रहते हैं, और उसका जो जिसका खाता होता है वो आदमी मर जाता है और ये सारे रुपए उसको मिल जाते हैं बैंक को। कितनी बड़ी मूर्खता है सोचिए, करोड़ों रुपए डाल देंगे स्विस बैंक में। तो ये हनुमान ने समझाया उसको, ये तुम्हारा लोग गलत है। फिर कहा कि ठीक है, अगर तुम फिर भी संतुष्ट नहीं हो तो एक काम और हो सकता है, मैं तुम्हें सीता के बदले और ज़्यादा अच्छी सुंदर स्त्रियाँ इकट्ठा करके ला के दूँ, सीता को छोड़ दो, साम दाम दंड भेज सब यूज़ कर रहे हैं। कैसा प्रलोभन दिया रावण को, क्योंकि पता था कि वो सुंदरियों का शौकीन है, कोई बात नहीं तो मैं तुम्हें और ज़्यादा अच्छी, फिर उन्होंने नाम दिया वंदुधारी, वंदुधारी करके बहुत सुंदर नर्तकी है, बोले सीता से भी सुंदर है, हालांकि कोई था नहीं सीता से सुंदर, लेकिन ऐसा बता रहे थे, बोले वो ला के देता हूँ, सीता को छोड़ दो। तो रावण ने कहा कि सीता को तो मैं किसी हाल में नहीं छोड़ूंगा, और जब ये सब समझाने पर वो माना नहीं तो रावण हनुमान ने कहा तो तुम्हारा तो फिर समझो विनाश हो गया, लंका जल जाएगी, राक्षस जाति मर जाएगी, तुम्हारा भी विनाश होगा। तो रावण क्रुद्ध हो गया, बोले मार डालो इस बंदर को। जैसे मारने के लिए कहाँ गया तो विभीषण ने आके कहा कि देखो, कहीं पर शास्त्र में ऐसा लिखा नहीं है कि किसी दूत का वध किया जाए। तो रावण ने कहा कि मैं किसी शास्त्र को नहीं मानता। फिर भगवान ने, विभीषण ने उसको समझाया कि इसको मारने से क्या लाभ होगा, जिसने इसको भेजा है उसको मारो ना, उसके लिए सेना भेजो, इसको मारने से क्या परिणाम होगा, इससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, और ये दूत है, राजदूत है, इसलिए उसका सिर मुंडा दो, बाल काट दो उसके, यू नो उसका अंग भंग कर दो, या उसकी पूंछ जला दो, कुछ भी करो, जो करना है करो, लेकिन हत्या नहीं करनी चाहिए। तो रावण ने कहा हाँ ये ठीक है, बोले इसकी बंदर को उसकी पूंछ का बहुत शौक होता है, है ना, बहुत प्रिय होती है बंदर को, उसकी पूंछ जला दो। और मैंने सोचा पूंछ जलाएगा, मेरी पूंछ जलाएगा ये? बाद में हनुमान ने पहले कहा ऐसे सुनो तो पहले, तो फिर बाद में सभा के बीच में बोला, क्या बात है रावण, बहुत सुंदर आइडिया दिया तुमने, मैं सोच रहा था कि मैं ये लंका को कुछ विध्वंस करके जाऊं, लेकिन मैं डर रहा था कि ऐसे कैसे करूंगा, विध्वंस करके जाऊंगा तो राम का बोले किसने बोला था तुझे विध्वंस करने को, अब तो मेरे पास यू नो एक कारण मिल गया कि मैंने विध्वंस नहीं किया, अपने आप विध्वंस हो गया। तो रावण को समझ नहीं पाए क्या बकवास कर रहा है ये, बोले इसका पूंछ जलाओ, उसका कॉटन उसके सिर उस पर लगा दो सब जगह पीछे पूंछ पर। तो हनुमान ने सोचा कि ये सबसे अच्छा आइडिया है, सारी लंका को आप जला कर राख कर दूंगा। तो जैसे बाद में कहा हनुमान ने, देखो तुमने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था ना इंद्रजीत, ये ब्रह्मास्त्र का कुछ असर नहीं हुआ मुझ पर, ये जो रस्सियाँ बांधी थी ना आसपास में, ये तो ऐसे ही लटकी हुई है, देखो मैं तो निकल गया, देखो मैं तो नाटक कर रहा था तुम्हारा। इंद्रजीत चौंके हैं, ब्रह्मास्त्र भी काम नहीं किया। हनुमान ने कहा कि अगर तुम चाहो तो घर की रस्सियाँ ला के बांध सकते हो, लेकिन मुझे कुछ नहीं होने वाला, मैं तो ये चला तुम्हारी लंका का दर्शन करने के लिए। तो हनुमान निकले, एक एक चीज को जला के दाग कर दिया, एक एक चीज, सोने की लंका थी पूरी, ये ऐसा नहीं, ये जो रामानंद सागर दिखाते ऐसी लंका नहीं थी, सोने की, पूरा सोने का लंका था पूरा, ये घर की दीवारें भी सोने की। मैं एक्चुअली जब सुनता था छोटा था, मैं अंदाज़ा नहीं था कि सोने का दीवार कैसा होता है, सोने का घर कैसा होता होगा, सोने का कैसा होता होगा, सर इमेजिनेशन कैसा होगा। लेकिन जब मैं लास्ट ईयर वेस्ट वर्जीनिया गया था, प्रभुपाद जी का कमरा है उधर, ये न्यू वृंदावन में अमेरिका में, तो मैं वृंदावन में गया तो वहाँ पर प्रभुपाद जी का कमरा है, प्रभुपाद जी का कमरा भक्तों ने सोने का बनाया
पूरा
पूरा, दीवार सोने की, छत सोने की, पैलेस ऑफ गोल्ड। मैं पहली बार देखा ऐसा कि दीवार भी सोने का, छत भी सोने का, सब सोने का, दरवाजा सोने का, सब कुछ सोने का। तो मैं सोचो दिस इज एक्चुअली ऐसा होता है, सोने का दीवार, सोने का छत, सोने का बहुत सुंदर बना है। तो हनुमान ने सबको जलाना शुरू किया, जलाते 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 इतना खुश हो गए, इतना खुश हो गए, सब जला दिया, सब जला दिया। अशोक वाटिका भी जला दी, अशोक वाटिका जला दी, सब कुछ हो गया। बाद में अंदर एकदम लाइट हुए, अरे अशोक वाटिका में तो सीता थी, तो सीता का क्या होगा, दौड़ कर भागे हो भी, बोले ये तो नुकसान हो गया। बाद में सोचा अगर सीता को कुछ हो गया तो खत्म बात, बड़े घबरा गए, दौड़ कर आए वहाँ पर, देखा सीता को, सीता बिल्कुल सुरक्षित थी, सीता को कुछ नहीं हुआ था। लेकिन ऐसा भी है कि कुछ शास्त्र वाल्मीकि रामायण में भी शायद ऐसा है कि सीता देवी ने हनुमान की रक्षा का आशीर्वाद दिया था कि हनुमान को कुछ ना हो, इसलिए उनकी जो पूंछ जलाई गई थी तो उनको ये जो अग्नि है वो शीतल लगता था, ठंडा ठंडा। बोले मेरी पूंछ ठंडी क्यों लग रही है, इतना बहुत ठंडा ठंडा लग रहा है, उसको अग्नि नहीं लग रही थी हनुमान को। ये पूरी लंका को जला दिया, और लंका जला करके सीता को कहा कि मैं अभी भी कहता हूँ माँ तुम चलो मेरे साथ। सीता ने कहा नहीं, तुम जाओ, राम आएंगे वो मुझे ले जाएंगे, उसी में मेरा यश होगा और इसमें तुम्हारा भी यश होगा, जाओ। तो हनुमान तो गए वापस और समुंदर में, समुंदर के पानी में पुंड डुबो दिया, उसको ठीक ठंडा कर दिया, ठंडा ही था ऐसे। फिर कूद करके किष्किंधा इधर आए, रामेश्वर इधर, सब लोग खुश हो गए, इतना चिल्लाए, इतना चिल्लाए सब बंदर। ये बंदर लोग ऐसे, अब बंदर पता है ना वो कैसे चिल्लाते हैं, उस प्रकार की वो आवाज़ निकालते हैं, बंदरों का जो आवाज़ होता है वो करते हैं, ई ई करते हैं, तो उस प्रकार की आवाज़ निकालते हुए खुश हो गए, इतना कूद रहे थे, नाच रहे थे, कुछ तोड़ रहे थे। बंदर खुश होता है तो कैसा करता है, नुकसान करता है सब जगह, तोड़ फोड़ देता है सब कुछ। तो क्या हुआ, रास्ते में एक मधुवन नाम का एक वन था रास्ते में आने के लिए। तो मधुवन नाम का जो वन था वो वन लॉक एंड की में रहता था, उस वो सुग्रीव की मालिकी का था, सुग्रीव उसके मालिक थे। और मधुवन के द्वारपाल दूधकारी ऐसा कुछ नाम था कुछ, तो उधर रहते थे वो। किसी का परमिशन नहीं था वहाँ जा सके अंदर। तो हनुमान, जाम्बवान, अंगद, ये सब नल नील सब गए। तो बंदरों ने कहा हमने इतना बड़ा काम किया है, सीता माता को ढूंढ दिया है, चार पार्टी बनी थी, एक नॉर्थ में गई थी, एक साउथ में, ईस्ट में, एक वेस्ट में, केवल हमें, हमारा ही सब, मुझे हमें ही सफलता प्राप्त हुई है, तो हमें कुछ तो अवार्ड मिलना चाहिए ना। तो क्या अवार्ड चाहिए, वो जो सुग्रीव का जो बगीचा है ना उसके अंदर बड़े बड़े पेड़ पर बड़े बड़े क्या बोलते मत पुड़े हनी यूज क्या बोलते हनी हाउस क्या बोलते वो हाँ हनी हाउस लेकिन वो मतपुरा बहुत मत था, इतना मत था कि पूरा जो जमीन था वो गीला रहता था मत से, इतना मत था वो। अगर आप चलते हो तो भी आपके पांव मत में तीन तीन चार चार इंच डूब जाएंगे, इतना मत वहाँ पर था। और अलग अलग फ्लेवर का सुगंधी। तो सब बंदरों ने कहा हम ये मध पीना चाहते हैं, जनरली बंदर लोग मध पीते हैं, हनी आजकल के बंदर का पता नहीं है, लेकिन पहले बंदर लोग का खाना था फ्रूट वगैरह खाते थे, पत्ते खाते थे और मत पीते थे, ये वो लोग उनका जीवन था, जो उनके लिए ये असव था, सेलिब्रेशन फेस्टिवल मत पीना। तो सब लोग टूट पड़े। जामवन ने कहा कि मैं जाना चाहता हूँ। हनुमान ने कहा सुग्रीव कहा है, मार डालेगा सुग्रीव, मत जाओ। बोले मैं तो नहीं जाऊँगा। हनुमान ने कहा, फिर जामवन गए, अंगद गए, हनुमान नहीं गए, नील नल गए, दोनों गए। बाद में सुग्रीव को पता पड़ा कि ये बंदर लोग ऐसा कर रहे, तो हनुमान सुग्रीव ने कहा कि सबको जाने दो। पता पड़ गया सुग्रीव को कि ये लोग खुश हुए हैं। रामचंद्र के पास आए, रामचंद्र को कहा कि ये लोग बहुत खुश हुए हैं, इसलिए इतना हल्ला कर रहे हैं। और ये समझ लो कि ये खुश हुए हैं, इसका अर्थ है कि सीता का पता लेके आए हैं, या तो फिर सीता को ही लेके आ गए, दो में से एक संभव है। लेकिन हनुमान ने सोचा कि राम भगवान को कंफ्यूज नहीं करना चाहिए, तो आकाश मार्ग से वो आने लगे, और आकाश मार्ग से चिल्लाते चिल्लाते आए, मैंने सीता का पता कर लिया है, सीता का पता कर लिया है। इसका अर्थ है कि सीता अभी लाना बाकी है। तो हनुमान गए रामचंद्र के पास, और हनुमान की बात सुनकर रामचंद्र इतने प्रसन्न हुए। एक्चुअली हर एक भक्त को ये सोचना चाहिए कि स्वामी जब प्रसन्न होता है, जब भक्त जो सेवक होता है वो उनका कार्य संपन्न करके लौटता है, जब प्रभुपाद या आध्यात्मिक गुरु आपको हमें किसी को जो आदेश देते हैं ना, अगर वो आदेश को अगर आप हनुमान की तरह पूरा करके लाते हो ना, तो स्वामी खुश होता है, आपके गुरुजी प्रभुपाद भगवान खुश होते हैं। तो ऐसा सेवा का भावना भक्तों में होना चाहिए, क्योंकि हनुमान ने क्या किया था, उनको तो केवल सीता का पता बताने के लिए भेजा गया था, बाकी सब काम तो उन्होंने खुद ने किया था, सीता का पता करना था, बस यही काम था उनका। लेकिन फिर वहाँ गए, सीता का पता बताया, सीता को मैसेज दिया, सीता को सांत्वना दी, लंका का दहन किया, पूरी लंका जला डाली, दो चार बड़े बड़े असुरों को मार डाला, ये सब काम बोनस में था, ये बोला नहीं गया था उनको, ये बोनस में था। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात है कि ये बोनस जो कार्य किया था ना, वो राम जिससे प्रसन्न हो ऐसे कार्य थे। कई बार कुछ भक्त और वाइज करते हैं, बोनस 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 करे एक्स्ट्रा काम, तो फिर उल्टा जो काम किया उसको भी बिगाड़ देते। लेकिन इसलिए बोलते हैं ना, श्री चैतन्य मनोभिष्टम, श्री चैतन्य मनोभिष्टम स्थापितम, जैसे बोलते हैं रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु की मनोभिष्ट, उनकी इच्छा को जानने वाले हैं। इसलिए कई बार हमारे गुरु लोग को कहते हैं हम किसलिए, प्रभुपाद मनोभिष्टम, प्रभुपाद के मन की इच्छा को भावना को समझ करके यू नो पूरी तरह से समझते हैं, और इस तरह से यू नो सेवा करते हैं। तो हनुमान जो थे वो राम के मनोभाव को समझते थे, इसलिए उनको सेवकों में सबसे महान सेवक माना जाता है। कितने जो नवधा भक्ति है उसमें जो सेविया व्हाट इज दैट सेवनम पाद सेवनम, पाद सेवनम जो भक्ति है, दास्यम दास्यम जो है, दास्यम दास्यम के जो श्रेष्ठ जो भक्त है वो है हनुमान। नवदा भक्ति में दास्यम है जो है हनुमान जी सबसे श्रेष्ठ, एक बंदर है वो तो बंदर, लेकिन दास्य भक्ति का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण। इसलिए हम सब भक्तों को चैतन्य महाप्रभु की और गुरु परंपरा की दास्य भक्ति से सेवा करनी चाहिए। ये सारा संदेश सब हनुमान ने जब सुनाया, रामचंद्र ने उनको निश्चल भक्ति का वरदान दिया कि तुम्हारी अविचल भक्ति रहेगी हमेशा मेरे प्रति, ऐसा वरदान दिया। और फिर उन्होंने ये सेतु बंध का आयोजन किया था, उससे पहले विभीषण आए थे उनको मिलने के लिए, विभीषण को त्याग परित्याग किया था रावण ने, तो भगवान ने विभीषण को ये वचन जो कहा था, बहुत फेमस वचन है ये, सुग्रीव को कहा था ये वचन, कौन सा वचन था,
मदद करी तो
नहीं, वो जो है ना तवास्मि इति इति च याचते अभयं ददामि सत्यं ते वर्जट। तो ये प्रसिद्ध श्लोक है भगवान ने जो कहा था फेमस, कि एक बार भी कोई व्यक्ति मेरी शरणागत होकर मुझे कहता है कि हे राम मैं तुम्हारा हूँ, तो उसी क्षण मैं उसको शरण दे देता, उसी क्षण अभयम ददामी, अभयम अभयम ददामी हम, तू रन ऑन द स्पॉट, तू रन। भगवान कोई पाप वाप पापी है कितना दुराचारी कुछ नहीं देखते। तो ये विभीषण जो है वो राक्षस कुल का था, लेकिन भगवान ने तत्काल उसको स्वीकार किया अपनी शरण में, तुरंत भयदान दे दिया तुरंत। ऐसा महान कार्य, यू नो, जो भी भक्त आज भी रामचंद्र के पास जाता है और सच्चे हृदय से रामचंद्र को कहता है कि हे प्रभु मैं आपका हूँ मुझे शरण दीजिए, उसी समय रामचंद्र उसको शरण देते उसी समय, और भगवान ने उसको लंका का राजा बना दिया तुरंत। तो सुग्रीव जी ने उनको पूछा कि आप इसको लंका का राजा बनाओ, कल जाकर रावण तुम्हारी शरणागत आएगा तो क्या करोगे, लंका किसको दो, लंका तो इसको दे दी, फिर रावण क्या करेगा, ना ये शरणागत हो गया तुम्हारा, तुमने इसको अभय दे दिया, और वो रावण आएगा उसको शरणागत होगा तो उसको भी अभय दे दोगे क्या। बोले हाँ उसको भी अभय दे दूंगा, उसको भी क्षमा कर दोगे, हाँ उसको भी क्षमा कर दूंगा, उसको क्या करोगे फिर, तो लंका तो इसको दे दी तो इसको, बोले मेरे पास अभी अयोध्या पड़ा है, अयोध्या उसको दे दूंगा मैं। ये भगवान का वचन है, कभी मिथ्या नहीं आता। तो इस तरह से विभीषण की सहायता से भगवान ने सेतु का निर्माण किया। तो आगे कथा लंबी है, लेकिन सेतु में केवल एक महत्वपूर्ण बात हमें सीखने को मिलती है कि भगवान ने अपने भक्तों के द्वारा ये सेतु का जो निर्माण करवाया उसमें भगवान ने अपनी नाम की महिमा को प्रस्थापित किया, कि वही पत्थर थे जिस पे राम का नाम लिखा था, वो पत्थर तैरना शुरू किए, वही पत्थर तैर रहे थे, ऐसा कहा जाता है। तो भगवान की शक्ति भगवान के नाम में भरी है पूरी। जो भक्त भगवान के दिव्य नाम का उच्चारण करते हैं, ये राम हनुमान कैसे आगे बढ़े, राम का उच्चारण करते हैं ना, बार बार राम राम उच्चारण करते हैं, इसलिए वो सफल हुए हैं। तो हर एक भक्त जो हरे कृष्ण मंत्र का ठीक से जब का माला का जब ध्यान से करता रहता है, वो व्यक्ति का आध्यात्मिक जीवन, क्योंकि वो निरंतर कृष्ण का सहयोग प्राप्त कर, निरंतर उनका संग प्राप्त कर रहा है, इसलिए हमें ध्यान से माला का जप करने पर कृष्ण की कृपा अवश्य होगी। तो माला का जप ध्यान से करना चाहिए। और ये सेतु का पत्थर तो आपने शायद देखा होगा, किसी ने अभी भी है कुछ पत्थर सेतु के, है ना, हाँ अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं कि वहाँ सेतु से लाए, द्वारका में मैंने देखा है, द्वारका में जो नारायण मंदिर है सूर्यनारायण गोमती के तट पर, गोमती के तट पर वो सूर्यनारायण मंदिर है अंत में, यहाँ वो एकदम लास्ट में है समुंदर की साइड एकदम लास्ट में, तो वहाँ पर मैं गया था एक बार, तो वहाँ पर पत्थर तैर रहा था, मैंने उसको धक्का भी लगाया था, तो तैर रहा था पत्थर, तो वो ऐसे कहा जाता है। और ऐसा भी मानते हैं कि नल नील को ये वरदान था कि वो जो भी चीज़ समुद्र में फेंकेंगे वो डूबेगा नहीं, वो तैरेगा, ऐसा उसको वरदान था। तो इसलिए भगवान ने उन वानरों की सहायता से ये सेतु बनाए, और ऐसा माना जाता है कि आज भी वो सेतु सैटेलाइट से भी दिखता है, सैटेलाइट से अगर आप देखोगे तो वो सेतु दिखता है पानी में, अभी भी पूरा लंका तक जाता है वो सेतु, अभी भी दिख रहा है, जो राम चीज पर जो सेतु राम ने बनाया था वो अभी भी दिख रहा है, अभी भी है इतने साल, हाँ पूरा है अभी भी, कितना साल हो गया, लाखों साल हो गए, हाँ 15-20 लाख साल हो गए, अभी भी वो सेतु दिख रहा है समंदर में। हो सकता है कि वो बोट में जाओगे तो नहीं दिखेगा, लेकिन वो पानी के अंदर है, अभी भी दिख रहा है, भगवान ने उसको पानी के अंदर दबा दिया है, तो कोई जाएगा वहाँ पर तो वही पुराने पत्थर जो वानर सेना ने रखे थे वो सारे पत्थर आपको मिलेंगे। तो ऐसे है जैसे पंचवटी है, पांच वृक्ष, तो ये पंचवटी के जो वृक्ष है वो 20 लाख साल पुराने होंगे, पांच जो बटे वृक्ष है पंचवटी, अभी भी वो अभी भी जो है वृक्ष तो पंचवटी बड़े बड़े वृक्ष। तो ये सारे लीलास्थली आज भी रामचंद्र छोड़कर गए हैं, गोदावरी नदी अभी भी है, ये सब जगह है, कुछ बाकी नहीं, सब जगह। ये सीता का कौन सा सीतापुर, क्या नाम है वो,
सीतामढ़ी,
फिर वो जनकपुर करके शायद एक जगह है, वो सीतामढ़ी नहीं, ये जनकपुर, हाँ ये जनकपुर वहाँ पर है बिहार में, बिहार के पास, जहाँ पर ये धनुष तोड़ा था रामचंद्र जी ने, सीता स्वयंवर हुआ था। तो ये सब जगह है, अभी भी वो सारी लीला स्थली है।
कानपुर पास बैठूर का गांव छे,
हां
बैठूर यहां जे रामचंद्र भगवान ने त्याग करे ना, तो जहां वाल्मीकि ऋषि नो के आश्रम छे, लव कुश नो जहां जन्म थयो ए जगह छे, सीता माता जे रसोई करता था,
हां
ए जगह जे कुओ छे कि बैठूर के गांव छे, कानपुर थी 5-6 किलोमीटर, मतलब कुमेड़ा मार गया था ना तारे जोई ना आया था।
तो ये सारी लीला स्थली अभी भी है, इसलिए ये हमारा सौभाग्य कि हम रामचंद्र की देवी लीलाओं का गुणगान भी गा सकते हैं और उनके लीला स्थल को देख भी सकते हैं। तो अभी कल रथ यात्रा होगा और परसों के बाद सोमवार को दूसरा रथ यात्रा है और फिर मंगलवार से 4 दिन राम कथा होगा रोज मंदिर में, राम कथा और सब। ये इस्कॉन का 50वां सालगिरह है, तो हो सकता है कि उस पर भी कुछ चर्चा होगी। तो बाशुवोष प्रभु, सार्वभौमा प्रभु और यशोमती नंदन प्रभु, ये 3 रहेंगे। यशोमती नंदन प्रभु शायद 2-3 दिन नहीं है बीच में, लेकिन सार्वभौम प्रभु है, उनका ही मेनली उनका ही कथा होगा, रोज़ उनका ही लेक्चर है 4 दिन। तो आप सब भक्त लोग आइएगा और लोगों को भी जोड़िएगा, कल रथ यात्रा है उसमें भी सब मित्रों को भी सबको जोड़िएगा, बुलाइएगा रथ यात्रा में। जगन्नाथ जी का ये साल में एक ही बार अपना तो ये रथ होता है, तो जितना हो सके उतना हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम ज़्यादा संख्या में इकट्ठा हो। सो श्री रामचंद्र भगवान की जय।